उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर जनपद बाराबंकी के एक सुदूर गांव पूरे बरवन में अगर आप जाएं तो वहां के बच्चे आपको स्पेनिश में अभिवादन करेंगे, आपसे स्पेनिश में वो बात भी करेंगे। आप भले ये देखकर आश्चर्य करें लेकिन इन बच्चों ने स्पेनिश भाषा सीख ली है और ये सब संभव हुआ है इसी गाँव के एक नवयुवक रिजवान खान के कारण। रिजवान इसी गाँव के रहने वाले हैं, शिक्षित हैं लेकिन नई भाषाएं सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर बच्चों को स्पेनिश सिखाना शुरू किया। अब विदेशी लोग रिजवान के माध्यम से उनके गांव आते हैं और इन बच्चों से मिलते भी हैं। रिजवान एक सामान्य परिवार से हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, फिर इन्होंने मेहनत करके पहले इंग्लिश सीखी, फिर अपना सफ़र शुरू किया। यूट्यूब के माध्यम से विदेशियों को हिंदी सिखाई, लगभग 50,000 से अधिक लोग इनके चैनल से जुड़ गए। फिर इन्होंने स्पेनिश सीखकर हिंदी माध्यम से स्पेनिश सिखाना शुरू किया।
सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम है रिजवान खान, मैं लखनऊ में रहता हूँ लेकिन जो मेरा गांव है वो उसका नाम है पूरे बर्मन जो कि बाराबंकी में है। और मैं LLB किया हूँ, मैंने BBA भी किया है, मैंने स्पेनिश में डेली एग्जामिनेशन एक होता है उसका B1 लेवल भी कर रखा है। तो लैंग्वेज का तरीका इस वजह से है क्योंकि मुझे हिंदी का बड़ा शौक था और मुझे हिंदी में कविताएं लिखना कॉलेज के टाइम पे, तो क्यों ना इंटरनेट का साधन अपनाया जाए। तो मैंने फिर इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा देखा कि क्या मैं हिंदी सिखा सकता हूँ लोगों को। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था पहले अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी खराब थी, क्योंकि हिंदी सिखाएंगे तो कौन से माध्यम से, अंग्रेजी से हम तो UP बोर्ड के थे, आज भी इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें मिस्टेक होती है स्पेलिंग। तो मैंने हेलो डॉक से पहले इंग्लिश सीखी और उसी दौरान मेरी काफी मुल्क के कई लोगों से, अलग अलग देशों के लोगों से बातचीत हुई, जिनसे मुझे पता चला कि उनको इंडिया और बॉलीवुड और हिंदी इन सबसे बड़ी मोहब्बत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सिखाते हैं, चैनल पे मैंने वीडियोस डालना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी कुछ वीडियोस अपने आप ही अलग अलग दुनिया के देशों में पहुंचना शुरू हुई, जैसे स्पेन और उधर दक्षिणी अमरीका में बोलीविया, मेक्सिको, पेरू। तो वहाँ के लोगों ने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या आपको स्पेनिश आती है, मेरा ये कौन सी भाषा है क्योंकि हमारे देश में बोली जाती है। तो बोले कि ऐसा है कि हमको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी इंग्लिश के माध्यम से मत सिखाइए, स्पेनिश के माध्यम से सिखाइए। हमने कहा स्पेनिश तो आती नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिखाते तो हम आपको मतलब पेमेंट भी करेंगे। तो मैं उस टाइम पे गली गली अपने मोहल्ले में इधर उधर जाके ट्यूशन पढ़ाया जाता था। तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं क्या होता है। और मुझे जितना एक महीने में यहाँ पे 26 दिन जाके ट्यूशन में मिलता था उसका डबल एक 4-5 दिन की क्लास हिंदी सिखाने का मिला। फिर मैंने घर पे ही बैठ के कोशिश की, बहुत सारे दोस्त बनाए मेरे स्पेन से और दक्षिण अमरीका से, बहुत सारे दोस्त बने जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उन्हीं में से कुछ दोस्त कभी कभी जब मुझे फोन करते थे कि हम इंडिया घूमने आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करनी है, तो फिर उनसे मुलाकात हुई। फिर मुलाकात का सिलसिला ऐसे बढ़ा कि ट्रैवल करना भी शुरू किया, तो फिर ट्रैवलिंग की तो उससे और सीखने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे मैंने काफी अच्छा काम किया लेकिन कोविड आ गया तो सब तबाह हो गया, तो खत्म।
गांव में कैसे इन्होंने बच्चों को जोड़ा ये भी एक कहानी है। कोविड का काल इनके लिए कारगर साबित हुआ और इन्होंने गांव में ही रहकर बच्चों को स्पेनिश सिखाना शुरू किया। लोगों ने हंसी भी उड़ाई लेकिन ये सब मजाक को सह गए,
एकदम सब भूल चुके थे। मैंने देखा और क्योंकि मैं लैपटॉप लेके गांव के बाहर नेटवर्क पकड़ा के वहां पर अपने बच्चों को क्लासेस देता था, तो कुछ बच्चे जो भाई सोच चलाने जाते थे तो सब आके देखने लगते थे कि ये लैपटॉप पे कर क्या रहे। तो मैं स्पेनिश बोल के एक गाँव में हिंदी सिखा रहा था तो वो लोग ये भी नहीं आते थे कोई भाषा भी स्पेनिश, तो बोले कहा हो भैया कहा भाई बोले, तो स्पेनिश बोल रहे थे, स्पेनिश जानते हैं, बता रहे अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये सब अंग्रेज इनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो गांव में कई लोग मजाक बनाते थे, मेड़ पर बैठे बैठे पता नहीं कहाँ करा कर रहा था। एक चाय की दुकान हमारे गाँव में होती थी तो वो हमसे काफी बातचीत किया, हमारे चाय वाय पीने जाते थे। तो वो कहीं यार हमारे लड़कों को पढ़ा दिन तो सब भुलाएगा और बिल्कुल बेकार देगा। तो हमने कहा ठीक है फिर, तो फिर वो आया, उसके साथ उसका एक और भाई आया, फिर बच्चों को उसने और बताया तो और बच्चे आए, धीरे धीरे बच्चे एकदम जुड़ने लगे। तो हमने कहा कि यार इतने मतलब बच्चों की संख्या ये हो गई थी कि करीब 40-40 हो गए थे, तो हमें इतने बच्चों को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो लड़ाई लंबी है क्योंकि गाँव में बच्चों का सीखने की स्पीड बहुत धीमी है।
यही नहीं, रिजवान के संपर्क में विदेशी भारत घूमने आने लगे हैं, इनको ये ग्रामीण पर्यटन से रूबरू करवाते हैं। اب تو انہوں نے ٹورسٹ پلانر کا لائسنس بھی لے لیا ہے. زندگی نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا.
اور پھر دوسری چیز جب میں نے دیکھی کہ ایک دو لوگ آئے, میں نے ایسے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اتنا اچھا ہو جائے گا یہ, ایک دو لوگ آئے, پھر وہ بچوں سے جب انٹریکٹ کرنے لگے, کچھ تو ایسے آئے جو میرے چینل دیکھ کے ہندی تھوڑا بہت سیکھے, کئی لوگ تو ایسے تھے ہندی لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے تھے, وہ ہندی میں انگریز ہندی میں املا بول رہا ہے اور یہاں دیکھ ہمارے اسٹوڈینٹ لوگ اس کو لکھ رہے ہیں, ایسا ہوتا تھا. اور کبھی کبھی ہمارے یہاں کے لوگ ان کو ہندی سکھا رہے تھے بچے کو, اور وہ لوگ اتنے انٹریکٹنگ ناچ کے گا کے ایسا سکھاتے تھے. اور ہمارے گاؤں کے بچے جو ہے وہ گاؤں میں آئے گا تو لوگ آئیں گے, لوگ آئیں گے تو بچوں کا ان سے انٹریکشن ہوگا, تو دونوں کا کلچرل کمبینیشن ہوگا اتنا اچھا کہ دونوں ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے اپنی اپنی چیزیں, تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کچھ اچھا کریئٹ کر پائیں گے. تو یہ ٹوریزم کا کانسیپٹ یہاں سے آیا کہ ہم لوگ اس کو گاؤں سے اپنے کنیکٹ کر پائے. لوگ چونکہ میرے سے ملنے آ رہے تھے اور میرا گھر بھی گاؤں میں ہے, تو مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ فارینرز کو ایک نئی چیز دکھا جائے, یہی دلی جے پور آگرہ کب تک گھومیں.
زندگی سبھی کو ایک اوسر ضرور دیتی ہے, ضرورت ہوتی ہے صرف اس اوسر کو پکڑنے کی. رضوان نے شاید اس بات کو سمجھا اور ثابت کر دیا. لکھنؤ سے فیصل فرید.